यहाँ पर स्वर्गीय अमृत को तुच्छ बना देता है। अमृत शब्द यहाँ पर मोक्ष रूप जो अमृत है उसको भी तुच्छ बना देता है। प्राकृत अमृत की बात तो जाने दो, अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है, दो ही अर्थ मुख्य हैं, या तो स्वर्गीय अमृत या मोक्ष, यही अमृत के दो मुख्य अर्थ हैं, और वो दोनों ही अर्थ भक्त के सामने अत्यंत अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य तात्पर्य है श्री हर भक्ति प्रेम भक्ति को प्रदान करना, वही है श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोजन। परंतु श्रीमद् भागवती संहिता मोहिनी है, मोहिनी भगवान का ये स्वभाव रहा कि जिस समय अमृत के कलशे को दैत्यों के हाथ में उन्होंने देखा, उस अमृत के कलशे को लेकर के देवताओं को देने के लिए उन्होंने नेत्र आकुंचन करते हुए कुछ मुस्कुराते हुए कटाक्षपात सहित दैत्यों से स्पष्ट रूप से कुछ बात कही, और नेत्र आकुंचन पूर्वक ही देवताओं की ओर देख करके भी कुछ बात कह दी। देवताओं की ओर देख करके तो ये बात कही, बोले देवताओं घबराओ मत, मेरा अवतार तुम्हारे ऊपर अनुकूल ग्रहण करने के लिए, तुम्हारे अनुकूल बनने के लिए ही हुआ है, मैं अमृत तुमको ही दूंगा। ये इसी प्रकार शास्त्र श्रीमद् भागवती संहिता मोहिनी स्वरूप को धारण करके स्पष्ट रूप से कहती है, नेत्र आकुंचन पूर्वक कहती है, स्पष्ट रूप से नहीं, छिपा करके कहती है, नेत्र आकुंचन पूर्वक कहती है कि श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य भगवत भक्ति है। इस बात को देवताओं के सामने जो रसिक जन हैं, उन रसिक जनों के सामने उस पंचायती सभा में सुखदेव जी जहां वर्णन कर रहे हैं, वो उस सभा में ज्ञानी भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, रसिक जन भी बैठे हैं। अब यदि रसिकों की बात को अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी कहें तो भक्त रूपी वह पदार्थ ज्ञानियों के हाथ में पड़ करके कहीं विकृत न हो जाए, क्योंकि भक्ति रूपी स्प्रहा, मुक्ति रूपी स्प्रहा होकर के वह पिशाची उसके रस को पान कर जाए, जो रस मिलना चाहिए रसिकों को वह रस उस मुक्ति रूपी पिशाची को न मिल जाए, स्प्रहा रूपी मुक्ति की स्प्रहा रूपी पिशाची को न मिल जाए। इसलिए उससे बचाने के लिए श्रीमद् भागवती संहिता मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रथम श्लोक में नेत्र आकुंचन करते हुए श्रीमद् भागवत के मूल तत्वों को व्यंजना वृत्ति के द्वारा या कहीं संकेत वृत्ति के द्वारा निरूपण कर देती है कि हरिलीला कथा ब्रात, ये तो है हरिलीला कथा का जो समूह वह तो है श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय, और अमृत अर्थात कृष्ण प्रेम वह है प्रयोजन पदार्थ। कृष्ण है इसके संबंध तत्व, और कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, वह है अमृत। उस अमृत के द्वारा सत्स्वरम जो रसिक जन है उसको ही मैं आनंद प्रदान करूंगी, ये श्रीमद् भागवती संहिता का श्री मोहिनी स्वरूप श्रीमद् भागवती संहिता का मूल फल है। परंतु वहां पर दैत्य लोग भी बैठे हैं, मोहिनी जी की सभा में दैत्यगण भी विराजमान है, कहीं दैत्यगण यह ना समझ लें कि अरे ये तो गया हमारे हाथ से, इसलिए दैत्यों को वंचित करने के लिए मोहिनी भगवान दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं। उनसे तो केवल नेत्र आकुंचन करते हुए भंगिमा मात्र में कहा, परंतु दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये जो बाद में बात कही गई कि सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्म, मैं यहां पर किसी भी तरह की वो ब्रह्म शब्द कह करके या किसी भी तरह की वकालत करने की जरूरत नहीं है। श्री शास्त्री जी महाराज ने अभी अभी पूर्व वक्ता महोदय ने अभी अभी निरूपण किया था कि हम सबका समन्वय करके करते हुए चलेंगे, दोनों का खंडन करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म तत्व का यदि हम वह श्री कृष्ण की अंगकांति रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के अर्थ को ही ग्रहण करें, जगत द्वैतम ब्रह्मोपनिषद सोच्य तनुभा, उस अंग कांति रूप अर्थ को ही ग्रहण करें तो ब्रह्म और उस ब्रह्म के साथ में जीव का जो एकत्व लक्षण जो अद्वितीय वस्तु है, उस अद्वितीय वस्तु जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता के एक एकता के द्वारा जो प्राप्त होने वाली वस्तु है, उस एकता के द्वारा प्राप्त होने वाले उस ज्ञान को ही यदि हम बस मैं अपनी जो 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 वस्तु रूप ब्रह्म और जीव की ऐक्य रूप जो ज्ञानियों का परम साध्य मोक्ष पदार्थ वह वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य का प्रयोजनम, उस कैवल्य को ही एकमात्र प्रयोजन माने। अद्वितीय जो वस्तु है, अद्वय जो ज्ञान तत्व है, उस अद्वितीय वस्तु को यदि हम श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय माने और कैवल्य का प्रयोजनम मोक्ष को हम प्रयोजन माने। ज्ञानियों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय है अद्वितीय वस्तु और ब्रह्म, ज्ञानियों की दृष्टि में, केवल ज्ञानियों की दृष्टि में। और उनके लिए प्रयोजन क्या है? अद्वितीय वस्तु का श्रवण करके उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, यह है उनका प्रयोजन। भक्तों के लिए श्री कृष्ण लीला कथा ब्रात, यह है वर्ण विषय, और अमृतम प्रेमामृत है उनके लिए प्रयोजन। जबकि ज्ञानियों के लिए अद्वैतम वस्तु द्वितीयम, जो अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म वस्तु, वह ब्रह्म वस्तु है ज्ञानियों के लिए एक प्रयोजन नहीं, एक वर्ण विषय। और कैवल्य केवल कैवल्य जो है वह मोक्ष है उनके लिए एक प्रयोजन। ये बात मोहिनी स्वरूप धारण करके श्रीमद् भागवत के रस तत्व से के जो अधिकारी नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को विमोहित करने के लिए ये बात कह दी गई। मूलतः श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य एकमात्र भगवत भक्ति नहीं है, मोहिनी स्वरूप को धारण करके श्री सुखदेव जी निरूपण कर रहे हैं। इसी तरह से श्री सुखदेव जी के द्वारा जो वस्तु के श्रीमद् भागवत के अंत में यदि इस प्रसंग के साथ में जोड़ दें हम, जो ब्रह्मोपदेश दिया है, उस ब्रह्मोपदेश को भी देखें, तो वह ब्रह्मोपदेश भी एक तरह से वही शास्त्र की मोहिनी रूपता को ही व्यक्त करने वाला है। प्रारंभ में निरूपण कर रहे हैं कि प्राण वर्णिते भीष्म भगवान हरिरीश्वरा, यह है श्रीमद् भागवत का मूल पदार्थ वर्ण विषय। और इसके बाद में जो कह रहे हैं कि घटे विन्ने यथाकाश आकाशस्यात यथा पुनः, बोले जैसे घट के टूट जाने पर आकाश आकाश हो जाता है, श्री विष्णा चक्रतपाद यथा शब्द की टीका कर रहे हैं। यथा का तात्पर्य है यथा यथम, माने जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप की उसे प्राप्ति हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि घट के टूट जाने पर जो आकाश था वो महाकाश हो गया। घटाकाश और महाकाश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। आकाश तो इतना विभू है कि उसको एक घट कभी भी परिच्छन्न नहीं कर सकता है, केवल अभ्यास मात्र हो गया है। आत्मा तो केवल अभ्यास मात्र है, देहाध्यास मात्र है, उस देहाध्यास मात्र की निवृत्ति मात्र है। जीव जो है, आत्मा जो है, वह आत्मा तो विभू है। तो घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्यात यथा पुनः, यथा शब्द इसके यथा के यदि हम अर्थ लें तो यथा का जो योग्यता अर्थ है, यथा के चार अर्थ वेदांत में व्याकरण में निरूपण किए जाते हैं, योग्यता दीप्ता और अनुवृत्ति और सादृश्य, ये जो चार अर्थ लिए जाते हैं इनमें यदि यथार्थ यथा का हम योग्यता अर्थ लें तो जीव की जो योग्यता है उस योग्यता को ही जीव प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से वहां पर कह रहे हैं कि आम ब्रह्म परम धाम, आगे ब्रह्म जहां पर श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव जी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, वहां पर भी ऐसा लगता है ये क्या कह गए, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य क्या जानने हैं। उस ब्रह्म उपदेश को देखकर के कभी भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्या उसका तात्पर्य क्या ज्ञान में है क्या, परंतु श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ज्ञान में नहीं है। श्रीमद् भागवत का तात्पर्य एकमात्र भक्ति में ही है। जैसे जहां पर यह कहा गया है कि आम ब्रह्म, गुरु जी का आदेश हो गया मैं यहां पर विश्राम करूंगा कि आम ब्रह्म परम धाम, आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम परम, आम ब्रह्म मैं ब्रह्म का अंश हूं, वो ब्रह्म क्या है परम धाम, परम श्री कृष्ण उनकी धाम अन्य कांति मात्र है। आम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म जो है वह कृष्ण की अंग कांति मात्र है और मैं साक्षात रूप से उन ब्रह्म का ही अंश हूं। उनसे अलग नहीं हूं। अतः ब्रह्माहम ये जो कहना, ये कोई ज्ञानियों की तरह से सोहम कहना नहीं है, ज्ञानियों की तरह से तत्त्वमसि कहना नहीं है, बल्कि यह प्रतिपादन करना ही है कि तत्सत्त्वमसि तू उनका ही अंश है। यह प्रतिपादन करने के लिए ही श्रीमद् भागवती संहिता में वो उपदेश प्रदान किया गया है। इसीलिए अंत में कहते हैं कि राजन हमने एतस्य कथम या तात यथात्मा पृष्ठवान्न पर हरे विश्वात्मन चेष्टाम। देखिए अंत में एकदम अंतिम जो श्लोक है शुकवचन का, वो अंतिम श्लोक फिर भक्ति में संगमित हो जाता है। हरे विश्वात्मन चेष्टाम किम भूय श्लोक मिच्छति। बोले जहां पर हरि की लीला को श्रवण कर लिया, फिर किम भूय, इस लीला से बढ़कर के और कौन सी दूसरी वस्तु हो सकती है। तो श्रीमद् भागवत का तात्पर्य, चाहे वो ब्रह्मोपदेश हो, चाहे जहां जहां भी ब्रह्म तत्व का जैसा लगता है कि ब्रह्म तत्व का उपदेश किया गया है, वो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म तत्व का उपदेश है, परंतु तत्वतः वो ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं है, वह मूलतः श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का ही वर्णन करने वाला, कृष्ण की अंगकांति का ही वर्णन करने वाला वह उपदेश है। और श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन एकमात्र कृष्ण प्रेम में ही है। कैवल्य शब्द का जो भक्तिपरक अर्थ किया गया वह अर्थ ही सर्वशास्त्र संवेद्य है, सर्वशास्त्र युक्त है।
कृष्ण सेवनम। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, आज हो गई अभी शांति की आरती भी नहीं हुई है,
इधर विद्वाना का सुंदर सुंदर भाषण भी हम लोग सुन रहे हैं। मैं अब संचालक महोदय श्री श्री वासुदेव कृष्ण ठीक है, ठीक होगा आपको दे रहा हूँ, आप बीच में घबरा के नहीं है, आप इतना क्यों घबराते हैं, मैं क्या आप सुनिए तो इतना घबराते क्यों हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, सुनिए तो पहले। तो मैं समय कम है, फिर भी अंत में हमारे पंडित जी आए, क्या नाम, विद्वान आदमी हैं, समय का मूल्य भी जानते हैं, किंतु फिर भी समय पर नहीं आए। सभी लोग भारतीय समय नहीं किंतु पंडित जो व्यक्ति होते हैं समय का मूल्य कदर जानता है। तभी मैं इनसे निवेदन करता हूं खूब संक्षेप रूप में 5 मिनट में अपना व्यक्त समाप्त कर, वहीं पर
मे गई मे दुर्मम वरम वन भुव श्यामा समालद्रुमयि नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशितचलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयो जयन्त यमुना कूले रहकेलयः श्रवसो कुबुलय श्रवसो कुबुलय वक्षणो रंजन उरसो महेन्द्र मणिदाम वृंदावन रमणीनाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। वंदनी पूजनी महामुनीन्द्राचार्य वर्तमान विराजमान अध्यक्ष महानुभाव एवं समुपस्थित विद्वद्गण एवं समुपस्थित माँ और बहन लोगों, बहुत थोड़े से में ही मैं जो प्रकृति आपका विषय है उस पे मैं थोड़े से वहीं अपनी वाणी को अलंकृत करता हूं। आपका जो विषय है कैवल्यी का प्रयोजनम, इसको खंडन का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये शब्द भी छड़ा की उसको नहीं अपनाना चाहिए, क्यों कि विचार करिएगा विद्वान लोगों, पहले क्या श्लोक है, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यी का प्रयोजनम, हो गया। ध्यान दो सब विद्वान लोगों, फिर यही श्लोक है कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिश्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्रस्य रति क्वचित। दूसरे श्लोक पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। विचार का ये विषय है इधर कि केवल क्या है। आचार्य लोगों ने अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्याशिषाम पते है ईसतव्ययी किमस्मा भी ईस चैतव विडम्बनम, इस पे कैवल्याद्याशिषाम पते पे आचार्य लोग क्या कहते हैं जरा ने ध्यान से सुनना। केवल केवलस्य भावः कैवल्यम या गुणवचन ब्राह्मणादिव्य कर्मणि क्षय से क्षय प्रत्यय हो रहा है। केवल किसको कहती है, थोड़ा विचार करो। संघात निवृत्ति, अध्यास निवृत्ति, प्रत्यापत्ति रूपम प्रथमम फलम अत्र कैवल्य पदभाष्यम। केवल ऐसा मत समझना कि केवल के पति कैवल्य पति भगवान नहीं है, अन्यथा कैसे कुंती जी कह रही है नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। गजेंद्र क्या कर रहा कह रहा है, आत्मा रामाय नमो कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। भागवत का एक भी अक्षर अनर्थक नहीं है, इसलिए कैवल्य मार्ग भी एक मार्ग है, लेकिन उसका अध्यास निवृत्ति संघात निवृत्ति प्रत्यापत्ति रूप प्रथम फल है। इसके पूर्व में तो दुख ही दुख है। ज्ञान मार्ग स्वरूप योग्यता को प्रदान करता है, जब स्वरूप योग्यता आ जाती है तो इसके बाद में क्या होता है कि जिस आनंद का तुम्हारे बीच में त्रोधान हो रहा है उसका आनंद का आविर भजनानंद के प्रकार से होता है। जब भजनानंद के प्रकार से आनंद का आविर्भाव होता है तो भगवान में भक्ति होती है, भगवत सायुज्य होता है और फिर भगवत गुणों का उस भक्तों में प्रस्फुटन होता है। इसलिए कैवल्याद्या चिता आशिता तासाम पते है। इसलिए कैवल्य भी एक मार्ग है, कोशकार के लिए एक है मुख्यान्य केवला, लेकिन भागवत सिद्धांत से परम फल क्या है तो गोपाल तापनी उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि एक जो कृष्ण है और पीठग हैं और वशी हैं सर्वज्ञ हैं जो और सर्वधा यो विभाति बहुधा विभाति, उनका जो भजन करते हैं उनको ही नित्य और शाश्वती भक्ति मिलती है नेतरेशम। और भगवद गीता में भी ऐसा कहा गया है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परां शांतिम तत्पर शाश्वतम अव्ययम। तो देखो शाश्वत की और गोपाल तापनी की शाश्वती सिद्धि का समन्वय करो। इसलिए कैवल्य पद केवल आपका प्रत्यापत्ति रूप प्राथमिक फल है, उसका अध्यास निवृत्ति में तात्पर्य है और केवल जो है वो संघात निवृत्ति में तात्पर्य है। भागवत का तो परम फल निगम कल्पतर और गलतम फलम, इसके अनुसार तिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए आलय की व्याख्या आचार्यों ने की है। आ अति तुच्छ आन आन ईश्वर अर्थे अत्र, अति तुच्छ है लय मोक्षो यस्मात्। उत्कट कोटि में उसकी तुच्छता है, लेकिन ठाकुर जी मुक्ति के पति नहीं है, मुक्ति का दान नहीं करते, अथवा के ज्ञान कोई पक्ष नहीं है, इसका खंडन कोई विद्वान नहीं कर सकता है, अन्यथा भागवत का खंडन हो जाएगा। कैवल्य नाथाय और कैवल्य पतये, कुंती जी की वाणी को कौन खंडन कर सकता है। इसलिए इसलिए शाश्वती जो भक्ति है और सिद्धि है वो तो कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं उन्हीं के लिए मिलती है, अन्यथा जितने जो है वो भजनानंद के जो वाक्य है भागवत में उनको यदि परम फलत्व नहीं कहोगे आप, तो न पर लसंत के चिदप वर्गम अपीश्वर थे चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट अग्रह की क्या संगति होगी। निवृत्ता विधसेदता निर्गुण्यस्था रमनते स्म गुणान कथने की क्या संगति होगी। स्वयं अपि आसादतम नोयवाद्रियंते भगवदीयत्वेन पर समाप्त सर्वार्था इत्यादि वचनों की क्या संगति होगी। इसलिए परम फल वो है और प्राथमिक फल वो है, कोई विवाद की जरूरत नहीं है।
अब मैं श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी हमारे पुराण के वेदों के उपनिषदों के हमारे भारतवर्ष में एक प्रख्यात विद्वान है। अब हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का जो विषय है कैवल्यैक प्रयोजनम, इसके संबंध में कुछ परिवेशन करें।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेश्वत राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयतिये स्थित मन्व धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सामान्य अर्थ तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी इसमें निरूपित हैं। राज्य लक्ष्मी को छोड़कर धर्मिष्ठ आर्य दशरथ के वचनों से जो वन में चले गए, माया मृगम माया के पीछे दयतेयाई स्थितम सीता जी के कथन से जो अन्वधावत पधारे, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को बहुत ही आनंद आया इसमें, महाप्रभु जी के दर्शन कर लिए उन्होंने। असुदुस्त्यजाम असुभि प्राणयरपि दुस्त्यजाम राज्य लक्ष्मी श्री महाप्रभु त्यक्त्वा छोड़ गए, सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी को भी जिन्होंने त्याग दिया और धर्मिष्ठ आर्य की वाणी को मानते हुए जो अरण्यम अगात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो चले गए या वृंदारण्यम उनमें जो महाप्रभु जी चले गए, माया मृग मृग नहीं मायया मृग्यते इति माया मृगः। माया मृग शब्द का अर्थ है जीव, माया मृग। और दयिता मानी स्त्री यहां नहीं, दूसरे अर्थ में जब चैतन्य महाप्रभु के अर्थ में यह श्लोक लगेगा तो माया मृगो जीवः तम दयितया दयाया भाव दई तस्य भाव तत्ता की दयतया कृपालुतया। जो दया पूर्वक माया मृग माने जीव, अरे अरे जीवो हरे कृष्ण हरे राम करते हुए माया मृगम दयितेवसितम कृपालुता से दई, घृणा भी अर्थ होता है कृपा, कृपा दंभ, कोष में कई अर्थ हैं। तो जो जीवों पर दया करते हुए अन्वधावत समग्र भारत में दौड़े, अरे जीवो कहां जाते हो, अरे कृष्ण नाम लो कृष्ण नाम लो, माया मृग के पीछे स्वयं उद्धार करने जो चैतन्य महाप्रभु गए, मैं उनके चरणों की वंदना करूं। माया मृगम दयते मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज की इस व्याख्यान सभा में तो मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है, संयोजक इतनी देर से बोल रहा था, मैं तो बोल ही रहा था, पर हमारे महाराज जी की जो बहुत वर्षों से मुझ पर एक बड़ी विचित्र सी कृपा रही, ब्रजवासी होने के नाते मेरा सम्मान, और बन महाराज जी के समय एसी वेदांती के समय हमारी आपकी सर्वदा वहां भेंट, आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है। मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी कुछ लाया वो आपके अर्पण करता हूं। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मिकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। पहली बात तो वक्ता कह चुके कि इस श्लोक की संगति जब तक तीन श्लोक साथ में नहीं आते नहीं होगी। पहली बात, ये श्लोक इकला नहीं लग सकता जब तक इसके पूर्व का श्लोक और इसके साथ संगति न की जाए, तब तक वो लग नहीं सकता, ये प्रथम बात। दूसरी बात, यहां पर अद्वितीय सदवस्तु श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, इसके निर्माण का क्या प्रयोजन है, एकमात्र कैवल्य माने मोक्ष, ऐसा अर्थ करते हैं तब कुछ विचार भी होता है। विचार करने पर ही जन्माद्यस्य के सौर्थ किए गए, विचार करने पर ही प्रेमा पुमर्थो महान जिसको लोग छोड़ चुके थे, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान इसकी स्थापना की गई। तो यहां भी जब हम विचार करते हैं तो केवल शब्द केवल भागवत में 12 बार आया है, केवल शब्द 12 बार आया। केवलम क्लेश भागिनः यहां केवल शब्द मात्र अर्थ में है, कहीं केवल शब्द प्रकृति से परे है, कहीं केवलानुभवानंद, कहीं केवलाया द्वितीयाय, कहीं केवल अद्वितीय है, कहीं केवलेन है भावेन, कहीं केवले परमात्मन केवल परमात्मा में, तो केवल का व्यापक स्वरूप दृग्गोचर होता है। कैवल्यैक प्रयोजनम में आइए, यह 16 बार श्रीमद् भागवत में पदांश रूप में आया हुआ एक अंश। आपको आश्चर्य होगा, वेद में केवल शब्द से कोई मंत्र प्रारंभ नहीं है, वेद में ऋग्वेद में कैवल्य शब्द से प्रारंभ वाला कोई मंत्र नहीं है। और कैवल्य शब्द कितना महत्व रखता है, आइए को दर्शन करें। 15-16 बार यह मंत्र शब्द आया कैवल्य, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, कहीं कैवल्य को नाथ, अभी जैसा बताया कैवल्यनाथ प्रभु हैं। कैवल्यनाथ पार्श्ववर्तनः चतुर्थ स्कंध। तो कहीं कैवल्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ही वहां आया, कहीं कैवल्य पति प्रभु हैं ऐसा आया, कैवल्यम अपुनर्भवम स्पष्ट आया ये मोक्ष की। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, जहां कोश व्याकरण की बात आई तो आप ये समझिए तीनों लिंगों में आता है। पहली बात, एक केवल शब्द ऐसा है जो तीन लिंग में आता है, व्याकरण में तीन लिंग है, पुल्लिंग में केवल, नपुंसक लिंग में और स्त्री लिंग में केवला राजनीति। तो केवल शब्द ऐसा है वो तीनों लिंगों में आता है। और एक विशेष बात, ये अव्यय भी है। ये तो हुआ इसका जन्म केवल शब्द का, ये कहां से आया और धातु कौन सी, केव धातु। इस केव धातु से हम अच प्रत्यय करते हैं, कहीं पर केव धातु से वृषादित्वात् कलश प्रत्यय करते हैं। व्याकरण में कलश प्रत्यय करने पर शब्द बनता है केव धातु से केवल, और केवे है कर्तरी वृषादित्वात् कलशी इति केवल। के शेरसी, के का अर्थ है शेर, शेर पर जो वलती, इसलिए इसका नाम हुआ केवल। के माने शेरसी, वलती जो शेर पर नाचे, शेर पर नाचता है हमारे पर भगवान श्री कृष्ण, हम उसके आगे किसी को देखते नहीं, इसलिए केवल का अर्थ भगवान श्री कृष्ण। ये व्याकरण से सिद्ध हुआ के शेरसी वलती वा इत विग्रहे तु पचाद व्यची केवलम स्त्रिया तापी केवला। केवली, केवला ही नहीं किंतु केवली ऐसा भी बन जाता है, निश्चित अर्थ में केवल ऐसा भी प्रयोग है। केवल कोहन एपमान, कैवल्यम आठ नाम है इसमें मोक्ष के। अभी एक वक्ता कह गए थे तो वो आठ कैवल्यवाची हैं। श्रेय शब्द तो बनता नहीं, प्रशस्त से स्र प्रशस्त से बनता है, पर इसमें क्या समझा इन्होंने मुक्ति में और मोक्ष में और श्रेय में और नितराम श्रेयस में, यह अलग विचार का विषय हो जाता है। परं सांख्यकार का आदमे कैवल्यम सबसे अलग हट करके रह जाना ऐसा वर्णन आया, और जैसा अभी ब्रह्म सूत्र में हमारे ब्रह्मचारी जी ने बतलाया, क्यों ब्रह्म सूत्र ही इसके आधार है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य संयता शास्त्र यो नित्वा तत्व समन्वयाति क्षते ना शब्दम गौणस्य नात्म शब्दा तन्नश्चत् मोक्षोपदेशान हेयत्वा वचनाच्य स्वाप्ययात गत सामान्यात् आनंदमयोभ्यासात् और लोकवत् लीला कैवल्यम। यह भी चर्चा है। तो यहां पर वो कैवल्य मुक्ति मोक्ष के साथ हम पर्यायवाची शब्द मान लें, अर्थ की इति हो गई, कोई विचारण न करें। पर हम क्यों न करें, यहां जब विचारणीय कोई बात आई है तो हम विचारणीय बात को यदि नहीं मानेंगे तो जन्माद्यत इस सूत्र से हम केवल ज्ञान पर सबका विवेचन कर जाएंगे और आज अंत हम ये कहेंगे सत्यम परम धीमई वहां था, सत्यम परम धीमई यहां है। परंतु आप करते क्या हैं, क्या आप सत्य शब्द को बना सकते हैं, क्या कोई विद्वान एक धातु से सत्य शब्द को बना सकता है, नहीं बनता। सत्य शब्द भी एक धातु से नहीं बनता, यहां पर अस धातु और ए धातु दो दो धातु लगानी पड़ती है। जब दो धातु से बनता है सत्य तो राधा कृष्ण से बना सत्यम परम धीमहि। सत्य त्यज्य सत्यव्रतम की व्याख्या में जब हम सोचते अस भूमि उससे लिया स इन गतौ उससे लिया य बीच में करा तुक का आगम तब बना सत्यम। तो जो अद्वैत शब्द का अर्थ केवल अद्वैतवाद में करते हो वे हमारी नहीं, श्री महाप्रभु जी से पूर्व यामुनाचार्य जी के वाणी को पूछें। राजा ने कहा, कहिए आचार्य जी, इन्होंने ठीक प्रतिपादन किया अद्वितीय शब्द का? बोले हाँ महाराज, आप चोल देश के महान आचार्य नृपति हैं, तो अद्वितीय मैं आपको कहूं, क्या आपकी पत्नी जीवित है? बोले वो तो है। आपका चोल नृप क्या लड़का जीवित है? बोले हाँ वो भी जीवित है। तो यथा चोल नृप सम्राट अद्वितीय योग्य भूतले, जैसे चोल राजा इस समय अद्वितीय है, अद्वितीय का अर्थ उसकी स्त्री, उसके पुत्र और उसकी संपत्ति इससे बिना नहीं उनके सहित है, इसी प्रकार से निर्गुण जो वहां से निश्रित गुण है, इसलिए हम उसको निर्गुण मानते हैं। असुर कहता है निर्गुण कौन देश को बात। इस प्रकार अब हम श्रीमद् भागवत जी को मार्ग प्रशस्त किया और कैवल्य सम्मत पथस्वत भक्त योग स्पष्ट लिख दिया। इस पद की व्याख्या में न जाने जो श्रीधर स्वामी चुप हैं, इस पद की व्याख्या में इतना बड़ा विद्वान जिसने भावार्थ दीप का नाम की टीका लिखी, वो विद्वान मौन क्यों हो गए? इससे लगता है कि जो बड़े लोग कहते थे कि श्रीधर स्वामी की आत्मा कुछ और है, मस्तिष्क कुछ और, मुझे तो ऐसा ही लगता है। केवल दो शब्द इस व्याख्या पर, तन्निष्ठम तद विषयम, इस प्रकरण में प्रयोजन लिखा है, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत है, अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन। अधिकारी कौन हुआ? जिज्ञासु। विषय क्या हुआ? श्री जीव गोस्वामी जी बोले ब्रह्म जीव का एकत्व लक्षण, अभेद रूप अद्वितीय वस्तु। वस्तु शब्द कैसे बना? वसती रीति वस्तु बना, वस्तु वही निष्ठा विषय वाच्य जिसका है तन्निष्ठ ब्रह्मिक ज्ञान, ये इसका विषय हुआ, जैसा भी भट्ट जी कह गए। संबंध क्या हुआ? वाच्य वाचक, ये भाव संबंध हुआ। और प्रयोजन कैवल्य माने स्वरूप प्राप्ति, ये चारों धर्म प्रोजित कई तो वो उत्तर परमो इस श्लोक में वर्णित हैं, यहां भी स्मरणीय कराए गए हैं। खास तौर से हर लीला कथा व्राता अमृतानंदित सस्वरम, इसकी और विस्तार के साथ स्पष्ट कर गए कि कथा में अमृत का आरोप है। इसके सत माने देने वाले जो सज्जन, उनमें सुरत्व का आरोप है, और इसका भी दाता कौन? भागवत मोहिनी रूप। तो इसके विवेचन में ये बहुत कह चुके हैं, इसलिए अब हम प्रेम ही प्रयोजन है इन शब्दों के साथ। जो अन्य विद्वान कह गए थे वो ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम यद वस्तु तन्निष्ठम, अर्थात ततोपि निसृत्य तिष्ठति तन्निष्ठम, ज्ञान कर्मा जवलाच रहता केवला अनन्य भक्ता तेषां भाव कैवल्यम तदेव प्रयोजनम यस्य तत्। ज्ञान कर्मादि की अवलाशा से रहे सज्जन वे केवल हुए और उनका भाव कैवल्य हुआ, वही प्रयोजन हुआ। हाँ वीर राघवाचारी और पदरत्नावलीकार ये वस्तु प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख तो करते हैं, प्रयोजन की चर्चा ही नहीं की। बड़े अच्छे टीकाकार जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ में ब्रह्म परमात्मा और भगवान, क्या सुंदर विवेचन किया है। कभी महाराज श्री से सुनना वेदांत सार में अद्वितीय वस्तु तन्निष्ठ पुराण माने श्रीमद् भागवत सिद्ध किया, और केवल माने शुद्ध प्रोज्जित कैतव जो भक्त वो धर्म है, उसका भाव कैवल्य है, यानी मोक्षाद कामाद रहित भक्ति, ये सब प्रयोजन उन्होंने सिद्ध कर दिया। कैवल्य संबंध पथस्वत भक्त योग, भगवत प्रेम ही पुरुषार्थ प्रतिपाद्य है। सालों के साथ टिया जी नहीं, अनेक वक्ता कह चुके थे। हमारे वंशीधर आचार्य ने जो टीका ली वो सब की सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की ज्यों की त्यों टीका अवतार करते हैं। इस विषय में केवल कार्य कारण प्रकृति संबंध रहतस्य निरंजन से भाव भगवत साम्यत्व लक्षण कैवल्यम सदैव प्रयोजन। यहां आपने वस्तु से तत्पदवाच्य लिया सर्वज्ञ और त्वम पदवाच्य लिया अल्पज्ञ, और भिन्न स्वरूप का एकत्व स्वभाव से एक सज्जन तो द्वैताद्वैत का भी निरूपण यहां पर कर गए। स्वामी नारायण के टीकाकार वसत्येव रूपेण सर्वदा इति वस्तु तन्निष्ठ सर्वदा एक रूप भगवत स्वरूप प्रतिपाद विषय पंत उन्होंने कैवल्य का अर्थ केवल मुक्ति प्राप्ति लिख करके अपने प्राण बचाए। कैवल्यम प्रकृत संबंधे जीवानाम राहित्य मुक्त प्राप्ति थी। इस प्रकार से भागवत के इन समग्र टीकाकारों की बात अपनी कुछ नहीं कही, उनका वर्णन करते हुए ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों को बहुत अच्छा लिखा है। अंतर्यामी रूप में जो प्रचुर शक्ति का अंश उस ज्ञान का ही नाम परमात्मा है, हमें ज्ञान से कोई न तो द्वेष है और न हम ज्ञान से कभी लड़ सकते हैं। हम ज्ञान से लड़ेंगे तो आपको बिठाएंगे क्यों पागल हैं? आप यदि ज्ञान लेने नहीं आए तो आप बैठे क्यों हैं? इसलिए ज्ञान माने भी परमात्मा है, हम तो ज्ञान को भी परमात्मा मानते हैं, लड़ने की बात तो है ही नहीं। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्यामित्व या माया शक्ति प्रचुर चिशक्ति उसके अंश विशिष्ट ज्ञान का नाम है परमात्मा। भगवान परपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट ज्ञान का नाम है भगवान, ये तो नहीं लड़ते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शक्त वर्ग लक्षण तद्धर्म अतिरिक्त केवल ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म। भक्त संदर्भ पृष्ठ 25। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान जब उनमें कोई भेद नहीं है तो हमारा ज्ञान से कोई यहां कोई उससे लड़ाई नहीं है। हमें तो कैवल्य प्रयोजन से केवल इतना लेना है कि जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कहते हैं वो आविर्भाव स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, वे शक्तियों के विकास सहित जो आविर्भाव है उसे भगवान कहते हैं। अतएव चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिख दिया अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान 2:22:5 संदर्भ में तो जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा। कितनी अच्छी बात कही भागवत, किसने कही भागवत का वक्ता कौन? भागवत का वक्ता वह ज्ञानी, भागवत का वक्ता परम वैराग्य युक्त श्री शुक, वह परम ज्ञानी जो संसारी नहीं था, आज उसको पढ़ाई गई भागवत, क्योंकि भागवत का प्रतिपाद्य है प्रेम, भागवत का प्रतिपाद्य नाम संकीर्तन। अन्यथा सुखदेव जैसा वक्ता ज्ञानी उसको व्यास जी बुलाते, जो निरतम उसको अध्यापयामास पढ़ो सुख पढ़ो। पिता कहते हैं बेटे तुम ज्ञानी जरूर हो पर बेटे बहुत ज्ञानी हो गए हो ना, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें बढ़िया चीज देते हैं, ये है श्रीमद् भागवत प्रेमा पमर्थो महान। लो प्रेम सीखो। तो जब भागवत को सुखदेव जी जैसा ज्ञानी इतना ज्ञानवान होने के उपरांत जब सीखने आता है तो भागवत में क्या बात थी जो सुखदेव को खल गई, सुखदेव जी को खल गई कि मुझे ज्ञान तो मिला, मुझे भक्ति नहीं मिली, मुझे प्रीति नहीं मिली, मैं उसे प्राप्त करूंगा। श्री भागवत का प्रयन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। हमारे यहां नहीं ब्रह्म सो काम कछु हम को, नहीं ब्रह्म सो काम कछु हम को, वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिले, ध्यान दें, ब्रज की रज में रज है के मिले, यही प्रीत की रीत निभावनी है, बन बल्लव गाय चरायो करें, सुने ग्वारेन की गोहरावनी है, नद नंद की देहारी पे घिस के, ये ज्ञान तो यहाँ घिसेंगे हम, नद नंद की देहारी पे घिस के, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान।